ओम शांति, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। यहाँ तो वैसे मॉर्निंग हमेशा कैसी रहती है? गुड ही रहती है, क्योंकि आसपास कुछ भी बेड है ही नहीं। असली गुड मॉर्निंग तो कब करनी है? कल से, जब हम अपने अपने फील्ड में जाएंगे और जहां आसपास हमें बहुत सारी नेगेटिव चीजें देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, लेकिन फिर भी, क्योंकि कई बार क्या होता है, सुबह सुबह ही कुछ कुछ, चाहे घर में या किसी की वजह से, हमारी मॉर्निंग थोड़ी थोड़ी बैड हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि आज से आपकी कॉन्फ्रेंस पूरी हो रही है या कल से कुछ नया शुरू हो रहा है? क्या लग रहा है? यहाँ पर पूरी नहीं हो रही है, लेकिन कल से हमारे जीवन का, कार्य करने का, जीने का, बोलने का तरीका सब बदलना है हमें। और आपने इतने सारे दिनों में यही सीखा कि मैं कौन हूँ, मेरा घर कौन सा है, मेरा पिता कौन सा है और मेरे अंदर पावर कितनी है। वो सब तो हमने देखा, लेकिन सच में मेरे अंदर कितनी पावर है वो कब पता चलेगा? कब पता चलेगा? जब हम उसको समय पर यूज करेंगे। जो हम सब ने अपने अपने सेशंस में सुना ही कि हमारे अंदर अनगिनत पावर है और उस पावर को हमें यूज करना है। क्योंकि हम सब ने जो यहाँ पर सीखा कि परमात्मा को याद करने से हमें कितनी सारी प्राप्ति होती है, जहां प्राप्ति नहीं है वहां याद भी, किसी की याद भी। आज देखो, एक पशु को भी, एक चिड़िया है या गाय है, उसको भी अगर आप एक दो दिन कुछ देना शुरू करेंगे ना, तो वो अपने आप अपने टाइम पर आ ही जाएंगी। तो खींचाव कोई भी जगह पर कहां होता है? जहां से कुछ मिलता है, कुछ प्राप्ति होती है, तो वहां हमारा मन अपने आप चला जाता है, लगाना भी नहीं पड़ता। एक छोटे बच्चे को भी एक दो दिन चॉकलेट देके देखो, वो भी अपने आप कहेंगे ये आंटी और ये अंकल तो मुझे चॉकलेट देते ही। और दूसरा क्या होगा, वो अपने एक दो फ्रेंड को भी लेके आएगा दूसरे दिन, चलो यहाँ तो ये आंटी और ये अंकल तो रोज चॉकलेट देते हैं। तो मन हमारा खींचकर कहाँ जाता है? जहां से हमें कुछ मिलता है। आज तक हमारा परमात्मा में मन लगाना कैसा लग रहा था? कैसा लग रहा था? थोड़ा मुश्किल लग रहा था। जाता था, जाता था, जाता था, जाता था, क्योंकि परमात्मा कौन है और परमात्मा से मुझे कितना मिलने वाला है वो हमें पता नहीं था। हम बहुत सिर्फ यही जगह पर आप आए हो ऐसा नहीं है, अब बहुत सारी जगह पर, दूसरी जगह पर भी गए होंगे। सबने परमात्मा के बारे में कुछ कुछ बताया, ये करो वो करो, लेकिन वो सब करना कुछ दिनों के लिए ठीक था, सुनने तक ठीक था, लेकिन फिर प्रैक्टिकल में क्या हो जाता था, वो थोड़ा थोड़ा फिर वापस चला जाता था। क्योंकि प्राप्ति जहां पर नहीं है वहां कुछ भी करना कैसा लगता है? हमारे लिए मुश्किल लगता है। एक छोटे बच्चे को भी आप काम दे दो कि जाओ बेटा ये करना है आपको, तो हो सकता है वो चला भी जाए। एक बच्चा थोड़ा मुंह बना के जाएगा और तीसरा तो नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा भी कह सकता है। लेकिन अगर उस बच्चे को साथ में ऐसा कहो कि जाओ ये लेके आओ और तुम अपने लिए भी कुछ लेके आना उसमें से, तो वो भाग के जाएगा, मना नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि ये करने से मुझे ये भी, मेरे लिए भी कुछ चॉकलेट मिलने वाली है। तो कोई भी चीज के लिए हमारा करने के लिए मन तैयार कब होता है? जब उसे पता है कि मुझे वहां से क्या मिलने वाला है। जब मिलने वाला है ये ज्ञान होता है तो हमारा मन उस चीज को करने के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है मुझे ये करना है क्योंकि मुझे इतना सब कुछ यहां पर मिल रहा है। तो परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने से हमें बहुत सारी शक्तियों की प्राप्ति होती है, अनंत शक्तियां हमारे अंदर डेवलप होने लगती है। जो हम अपनी शक्तियों को, अपनी एफिशिएंसी को, अपनी स्ट्रेंथ को जो हम भूल चुके हैं, वो सारी शक्तियां क्या होने लगती है? जागृत होने लगती है। जैसे हम सब ने ये सीखा ही यहां पर कि राजयोग माना क्या, कौन बताएगा? मेडिटेशन माना क्या? हाँ, आत्मा का कनेक्शन उस पावर हाउस से जोड़ना, उसी को कहते हैं राजयोगा मेडिटेशन। आप सोच सकते हैं कि जैसे एक लैपटॉप है और पेन ड्राइव है, लैपटॉप की सारी चीजें पेन ड्राइव कनेक्ट कर दो तो लैपटॉप की सारी चीजें उस पेन ड्राइव में, वो सारा डेटा चला जाएगा ना। तो उसी तरह जब मेरा मन उस परमात्मा के साथ जुड़ेगा तो क्या होगा? क्या होगा? परमात्मा के सारे डेटा, बस कितना सिंपल है अपने आप को फुलफिल करना। सारा डेटा उनके पास जो है वो सब ट्रांसफर होने लगेगा हमारे अंदर, और फिर क्या होगा? हम कैसे बनते जाएंगे? कैसे बनते जाएंगे? परमात्मा जैसे। उनकी सारी शक्तियां हमारे अंदर ट्रांसफर होने लगेगी। जो हमारा जीवन कभी कभी अशांत हो जाता था, कभी कभी दुखी हो जाते थे, वो सब खत्म हो जाएगा और मैं आत्मा भी कैसी बन जाऊंगी? उनके जैसी पीसफुल, उनके जैसी लवफुल, उनके जैसी स्टेबल, उनके जैसी पावरफुल बनती जाऊंगी। तो कितना सिंपल है परमात्मा के जैसा हमें बनना। सिर्फ क्या करना है? कनेक्ट ही करना है। जैसे कनेक्ट किया वो सारी एनर्जी हमारे अंदर ट्रांसफर होने लगती है। आज पता है हमारा मन दुखी और अशांत क्यों हो रहा है? उसका एक रीजन है, क्योंकि मेरा जो हम सब ने देखा कि हम सब योगी तो है ही, क्योंकि हमारा मन कहीं ना कहीं तो हमेशा जुड़ा ही रहता है, ऑफिस में, परिवार में, कहीं ना कहीं। तो हम सब योगी तो है ही, लेकिन अभी हमें क्या बनना है? राजयोगी बनना है। तो हमारा मन आज तक कैसे कैसे लोगों को याद करता था? किन किन लोगों से जुड़ा हुआ था हमारा मन? मनुष्यों से, जिनके मन में अशांति है, जिनके मन में टेंशन है, जिनके मन में दुख है, तकलीफें हैं, उनको ही हमारा मन 24 घंटा याद करता रहता था। मतलब मेरा मन कनेक्ट था उन लोगों के मन से, फिर क्या होता था? उनके सारे डेटा हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। और ऐसे करते करते आज हर मनुष्य दुखी और अशांत हो रहा है, क्योंकि हर एक के नेगेटिव डेटा ही ट्रांसफर हो रहे हैं। इसलिए अगर हमें परमात्मा के जैसा अपने आप को तैयार करना है कि हम फील्ड में रहकर भी खुश रहे, शांत रहे, स्टेबल रहे, सब कुछ करते हुए भी हमारी एनर्जी बनी रहे, उसके लिए हमें अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करना है। और ये भी बताया कि कनेक्ट करने के लिए कोई सब कुछ छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। हम सब कर्म योगी भी है, कर्म करते करते भी सब्जी काट रहे हैं, किचन में कुछ कर रहे हैं या ऑफिस में कुछ कर रहे हैं, तभी भी हमारा मन तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ याद ही करता रहता है। तो अभी हमें सब कुछ करते हुए भी ये याद रखना है कि मैं आत्मा कर रही हूं और वो करा रहा है, उनकी एनर्जी मुझे मिल रही है और इसलिए मैं कर रही हूं। ये कॉन्शियस में रहकर हम काम भी करें, हमें कर्म नहीं छोड़ना है, सिर्फ कर्म करने का तरीका सिर्फ वो चेंज करना है। कर्म हमारे वही रहेंगे। यहां पर भी आप सब देखते हो, जो आप अपने घरों में काम करते हो, सब्जी काटना, भोजन बनाना, सफाई करना, तो यहां सब भी तो वो सब वही हो रहा है ना। कोई जादू से तो यहां पर भी नहीं हो जाता, लेकिन हर कोई यहां पर किस भाव से करते हैं, ये भगवान का घर है और मैं उसकी सेवा कर रहा हूं। तो जिस जगह पर हम रहते हैं वो भी क्या है, वो भी क्या है, वो भी तो सब भगवान ने ही हमें दिया है। और मैं उस घर की सेवा कर रहा हूं, ये परिवार के लोगों की सेवा के लिए मुझे निमित्त बनाया है। जैसे आप सब यहां पर आए, आपको कोई भी सेवा की कंप्लेन नहीं हुई। हर कोई यहां पर रहने वाला यही चाहता है कि उनकी हर चीजें, उनको हर सुविधा दी जाए। तो हमें अपने परिवार में, अपने ऑफिस में भी कैसे रहना है कि मुझे हर तरह से इनकी सुविधाओं को पूरा करना है, लेकिन जवाबदारी समझकर, मोहवश लोभवश नहीं, तो वहां दुख क्रिएट होता है। तो राजयोग से हमें ये सारी शक्तियां मिलती है कि कैसे हम अपने परिवारों में, अपने अपने कर्म क्षेत्र पर रहकर सबको खुश रख सके। और इम्पोर्टेंट सबसे चीज है, मैं खुश कैसे रह सकूं। यही हमें परमात्मा का ज्ञान सिखाता है, राजयोग सिखाता है। तो आज हम देखेंगे यहां पर अष्ट शक्तियां, जो हमारे अंदर पावर्स तो बहुत सारी है, लेकिन उसको इनर पावर, एट पावर्स के रूप में बोलते हैं। तो सबसे पहले हम यहां देखेंगे जिसको कहते हैं सहन शक्ति, टॉलरेंस पावर। हम सोचते हैं कई बार परिवारों में या ऑफिस में कुछ करते करते यही होता है ना, सहन शक्ति की भी एक लिमिट होती है, सीमा होती है, कब तक आखिर सहन करें। और जब तक सहन करेंगे लोग ऐसा ही करते रहेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, आज परिवारों में भी जो देखते हैं, परिवार अलग हो जाते हैं, ये सब का कारण क्या है? हाँ, किसी ने बोला तुरंत दूर हो गए, नहीं कर पाते, क्योंकि वो शक्ति हमारे अंदर, क्योंकि हमने ये सोचा कि ये सहन करना भी एक शक्ति है, ये पता ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं सहन शक्ति। तो जो खुशी से सहन करते हैं, उसके अंदर क्या आने लगती है, शक्ति आने लगती है। इस पिक्चर में देखेंगे कि एक बच्चा पेड़ को क्या कर रहा है, पत्थर मार रहा है, और पेड़ क्या करेगा, फल दे रहा है। वो क्या खा क्या रहा है और दे क्या रहा है? और मनुष्य को अगर करेंगे तो मनुष्य क्या करेंगे, वो सामने से पत्थर मारेंगे। तो पेड़ पत्थर खाके भी फल दे रहा है, क्योंकि उसका काम ही क्या है, देना। सहन शक्ति, जब हम सोचते हैं कि कितना करे, उसकी भी एक सीमा होती है, हद होती है। एक मंदिर में जब हम जाते हैं तो वो मूर्ति होती है जिनके दर्शन के लिए हजारों भक्तों की बाहर लाइन लगी रहती है। कितने घंटों से भक्त लोग खड़े थे उस मूर्ति के दर्शन के लिए, सोचिए। अभी वो मूर्ति भी किसकी है, पत्थर की है। और वो पत्थर की मूर्ति भी कैसे बनी, है ना, हथौड़े खा खा के। अगर वो पत्थर ने हथौड़े खाने से मना कर दिया होता तो मूर्ति बनती नहीं, मंदिर में वो जाती नहीं और हजारों लोगों की भीड़ होती नहीं। तो पत्थर में से मूर्ति कैसे बनी, हैमर, हथौड़े खा खा के। तो जब हम सहन करते हैं तो वही सहन शक्ति हमें क्या बना देती है, एक मूर्ति बना देती है, एक पूजनीय बना देती है। इसलिए सहन शक्ति के साथ साथ एक दूसरा भी हमारे अंदर गुण आने लगता है, वो है नम्रता। हाँ, नम्रता का मतलब पोलाइटनेस। एक नदी थी, उसको बहुत ही ईगो था अपने ऊपर। किस चीज का, कि मैं अपने साथ कितने बड़े बड़े पेड़ और कितने बड़े बड़े घर को बह के लेके आती हूं। उसने समुन्दर से ये बात किया बहुत प्राउडली, कि देखा मेरे में कितनी पावर है, मैं अपने साथ बड़े बड़े पेड़ और बड़े बड़े घर लेके आ जाती हूं। तो सागर ने उस नदी को कहा कि कल तुम घास लेके आना, घास जो होती है ना, वो लेके आना। तो नदी फिर से थोड़ा प्राउड दिखाने लगी, अरे ये तो मेरे लिए कौन सी बड़ी बड़ी बात है, जब मैं इतने बड़े बड़े पेड़ और घर घसीट के ले आती हूं तो घास तो ले आऊंगी। जब नदी घास लेने जाती है तो घास उसके साथ नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, है? तो पेड़ भी तो नीचे ही होता है, वो भी तो कितना जड़ सहित मजबूत होता है, लेकिन फिर भी वो निकल आता है जड़ सहित। हाँ, क्योंकि पेड़ और जो घर होते हैं वो सब क्या होते, एकदम टाइट होते हैं। घास क्या करते, इसलिए देखो कई बार तूफान होता है तो पेपर में न्यूज में हम देखते हैं इतने झाड़ गिर गए, कभी आया इतने घास गिर गए, क्योंकि घास अपने आप को जिस दिशा में हवा और जिस दिशा में पानी होता है वो अपने आप को झुका लेता है, और पेड़ हमारी तरह ईगो में रहते, मैं क्यों झुकूं, वो हमारी तरह ईगो में रहते हैं इसलिए वो झुकते नहीं। और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो जड़ सहित उनका अस्तित्व निकल जाता है। तो जितना हमारे अंदर सहन शक्ति होगी, नम्रता, पोलाइटनेस होगी, उतना हम कोई भी सिचुएशन में टिक सकेंगे। जहां सहन शक्ति है वहां दूसरी शक्ति है समाने की शक्ति। एक सागर हर नदियों का पानी अपने अंदर समा लेता है, और जब हर नदियों का पानी सागर में जब समाता है तो सागर ये नहीं कहता कि कचरा नहीं लेके आना। नदी जब सागर के अंदर आती है तो अपने साथ कचरा भी लेके ही आती है, लेकिन सागर क्या करता है, समा लेता है। हाँ, समाता नहीं है। इसीलिए सागर की गहराई में जाएंगे तो क्या मिलेंगे, मोती मिलेंगे। और सागर का किनारा भी एकदम साफ रहता है, क्योंकि उसके अंदर जो भी कचरा डालते हैं या आता है वो सीधा बाहर ही फेंक देता है। नदी भी कचरा तो अपने अंदर नहीं लेती है, लेकिन नदी क्या करती है, वो कचरा किनारों पर छोड़ देती है। इसलिए नदी के किनारे हमेशा गंदे रहते, लेकिन सागर तो सीधा बाहर ही फेंक देता है। हम क्या करते हैं, जरूरत की चीजें बाहर जली जाती है और जो नहीं जरूरी है, हाँ, वो अंदर चला जाता है। और जहां ऐसा हुआ, आपके बारे में ऐसा कहा था उन्होंने, ऐसा हुआ वैसा हुआ, जहां ये सारी बातें कचरे समान जो है, फेंकने जैसी बातें हैं, वो अंदर चली गई, तो इसका रिजल्ट क्या होगा। हम सब ने यहाँ सेशंस में सुना, आज सबसे ज्यादा जो बीमारियां बढ़ रही है उसका कारण क्या है, मानसिक बीमारियों का कारण क्या है, क्योंकि जहां कचरा इकट्ठा होगा वहां क्या होगा, क्या होगा, है ना, पॉल्यूशन होगा, और वो पॉल्यूशन फिर नई नई बीमारियों को जन्म देता है। तो आज डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, हाई बीपी है, ये सारी बीमारियां जो बढ़ रही है उसका कारण क्या है, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारी फेंकने जैसी बातें अभी भी हमने अपने मन में स्टोरेज करके रखी है, और वही सारी बातें हमारे मन को अशांत, दुखी कर देती है, मींस पॉल्यूटेड कर देती है हमारे मन को। और फिर पॉल्यूटेड माइंड क्या करता है, ऐसी सारी बीमारियों को जन्म देता है। बस खाते रहो फिर गोली। कई लोग अपने जीवन में इतनी गोलियां खाते हैं कि जैसे लगता है कि इनका जन्म गोली खाने के लिए हुआ है। भोजन से ज्यादा उनकी दवाइयां होती है। 8 दिन में 10 गोली खाते हैं, भोजन से पहले इतनी, भोजन के बाद इतनी, सुबह उतनी, सोने से पहले इतनी। एक रिसर्च किया गया है अभी कि मनुष्य की इनकम जो होती है उसका 30-40% हिस्सा है ना मेडिकल में चला जाता है, और वो भी बिना रीजन। तो इसलिए जब हम राजयोग के अभ्यासी बनेंगे, परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट करेंगे, ये चीज आप बार बार यहां सुनेंगे, उतना आप क्या बनते जाएंगे, पॉजिटिव, प्योर, स्टेबल बनते जाएंगे। बीमारियां दूर। तो जो 30-40% बीमारी में आपकी इनकम जा रही है वो कहां होगी, कहां रहेगी, तो पैसे की बरकत, क्योंकि बीमारी मेडिकल ऐसी दवा है जहां हम बार्गेनिंग, जहां हम इकोनॉमी, बाकी सब चीजों में, चलो ये कपड़ा इतना महंगा है नहीं पहनना है, ये थोड़ा सस्ता वाला पहन लेते हैं, सब चीजों में आप बचत भी कर सकते हो, इकोनॉमी कर सकते हो, बार्गेनिंग कर सकते हो, लेकिन मेडिकल में जो बोला है वो लाना ही पड़ेगी। वो दवाई भले कितनी महंगी है, कहीं से भी मिलती है, वो करना ही पड़ेगा। तो हम मेहनत करते हैं और फिर थोड़ी सी अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते, उसकी वजह से हमारे सारे पैसे बाहर जा रहे हैं। और फिर भी फिजिकली तो कैसे हो रहे हैं, हमारी काम करने की क्षमता तो डे बाय डे कम हो रही है, थक जाते हैं और काम तो करना ही है, तो फिर इरिटेट होके जबरदस्ती डांट डांट के गुस्से से ऐसे हम काम करते हैं। आप सोच सकते हैं एक स्ट्रेस माइंड ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है या हैप्पीएस्ट माइंड ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। बहने जो घर चलाते हैं, घर में रहते हैं, तो वो सबसे अच्छा सबका हैंडलिंग कब कर पाएगी, जब हमारा खुद का माइंड स्ट्रेस है तब, या जब हम बहुत खुश है तब। एक स्पोर्ट्स प्लेयर भी बैठे होंगे तो वो भी व्यक्ति कब अच्छे से खेल पाएगा, जब खुश होगा, जब वो खुद टेंशन में होगा, स्ट्रेस में होगा। इवन आज बच्चों की कंप्लेन भी क्या रही है, पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रहता है, तो वो याद न रहने का कारण एग्जाम का स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस, क्या होगा क्या होगा, तो वो स्ट्रेस उनको याद रखने ही नहीं देता है। हमारी सारी एनर्जी स्ट्रेस टेंशन के कारण ड्रेन होने लगती है, कॉन्सेंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर लो होने लगता है। पहले बच्चे एग्जाम कैसे देने जाते थे, पहले के समय, शायद आपके समय में, आप भी शायद एडवोकेट होंगे, कोई डॉक्टर होगा, कोई क्या होगा, लेकिन कैसे एग्जाम देने जाते थे, हैं? खुश होके, कोई छोड़ने भी नहीं आता था। हाँ, और एकदम खुश होके, जैसे पता नहीं कुछ है ही नहीं। और आज एग्जाम देने कैसे जा रहे हैं, पेरेंट उनको ऐसे छोड़ने जाते कि जैसे मेरा बेटा सरहद पे जा रहा है। इतने टेंशन में होते खुद पेरेंट भी, और पता नहीं क्या होगा। इसलिए जैसे ही एग्जाम हॉल में एग्जाम पेपर हाथ में आया, सब वॉश हो जाता है। तब वो वही कंफ्यूज रहता है कि अब मैं क्या लिखूं, वो सारा कितना बड़ा उसका आंसर होगा एक पेज का, लेकिन उसे आधा ही याद आ रहा है, आधा वो भूल गया है। याद है लेकिन आधा ही, तो आधा क्यों भूल गया वही। तो समाने की शक्ति भी होनी चाहिए कि मुझे मेरे अंदर क्या लेना है और क्या किनारे पर भी नहीं रखना है, सीधा बाहर ही फेंक देना है। और वो पावर कहां से आएगी, मेडिटेशन से। क्योंकि आज मेरे बारे में किसी ने कुछ कहा, पैसे हो, और उसको बाहर फेंकना मेरे लिए, हाँ, बहुत मुश्किल है। कैसे मैं इस चीज को भूल जाऊं कि आपने मेरे बारे में ऐसा ऐसा कहा, तो कितना मुश्किल है। कई लोग रात रात भर यही एक थॉट के कारण, ऐसा बोला उन्होंने, यही एक थॉट उनको पूरे दिन काम नहीं करने देता, यही एक थॉट पूरी रात रात भर वो सो नहीं पाते, ऐसा बोला मेरे लिए बस ये एक थॉट। लेकिन जब हम एक स्पिरिचुअलिटी के रेगुलरली अभ्यासी बन जाते हैं, तो क्या सोचेंगे, अरे बोले बोला उसमें क्या है, बोलने दो, उनका काम ये है। लेट गो, लेट गो की हमारे अंदर एक अचीवमेंट आ जाती है। लेट गो, अरे हो जाए, कोई बात नहीं। और अगर वो व्यक्ति हमारे सामने, जिन्होंने मेरे बारे में कुछ बोला था, वो मेरे सामने आ भी गया तो भी, अरे कैसे हो रहे, एकदम वो याद भी शायद नहीं रहेगा कि इन्होंने कुछ बोला है मेरे बारे में। क्योंकि परमात्मा कहते हैं, जो मंदिर दुनिया में भी लोग गाते हैं कि मन एक मंदिर है, तो आज हम अपने मन रूपी मंदिर में क्या भर के रखा है। हम सब ऑफिस में रहते हैं, घर में रहते हैं, तो जिस जगह पर रहते हैं उसकी सफाई करते हैं या नहीं करते, हाँ, और हाँ, तो सोचिए यहां पर क्या होगा। अभी आप सब इतने दिनों से यहां पर हो, कोई ऑफिस बंद करके आया होगा, कोई कुछ बंद करके आया होगा, बहने अपना घर भी किसी भरोसे छोड़ के आई होगी, जाते ही क्या करने लग जाएंगे। तो हमारे मन की कौन करेगा, हमारे मन की सफाई कौन करेगा? ये मन किसका है, क्या सिखा है यहां पर? ये किसका है? मेरा है ना, तो इसकी सफाई कोई दूसरा दो, तो किसको करनी है? तो जैसे हम अपने शरीर की सफाई रोज करते हैं, अपने घर की सफाई रोज करते हैं, कपड़े की सफाई रोज करते हैं, तो मन की सफाई भी रोज करनी है। और जब हम मन रोज साफ करते रहेंगे तो हमारा मन कैसा रहेगा? नीट एंड क्लीन। और जहां पर नीट एंड क्लीन माइंड है, उस मन में बीमारी और उसके शरीर में जब मन नीट एंड क्लीन है तो फिजिकली कैसे होंगे? फिट एंड फाइन। तो जब मन हेल्दी है, शरीर हेल्दी है, तो फिर वहां पर धन की कमी, पैसे की कमी कभी भी उस घर में होगी ही नहीं। हाँ, और खर्चा कितना है मेडिटेशन करने में? जीरो। सिर्फ मुझे खुद के लिए समय निकालना है, बस इतना ही हमें करना है और कुछ नहीं करना है। और उसके बेनिफिट्स आप खुद अपनी लाइफ से देखेंगे। तो समाने की शक्ति भी राजयोग से अपने आप आ जाती है। फिर तीसरी शक्ति है परखने की शक्ति। परखना, आज कई बार हम कोई सिचुएशन को परख नहीं पाते हैं, क्या करे क्या ना करे। और जहां परख शक्ति थोड़ी सी लो होती है, वहां फिर दूसरी शक्ति है निर्णय शक्ति, डिसीजन पावर, जजमेंट पावर भी कैसी होगी? लो होगी। कई बार कोई डिसीजन हमें क्विकली लेना है, लेकिन यहां पर तो इतनी अनस्टेबिलिटी है, तो हमारा अनस्टेबल माइंड डिसीजन नहीं ले सकता। और फिर कई बार क्या होता है, कुछ ऐसा स्ट्रेस में आकर या चिंता में आकर दुखी होकर कोई डिसीजन ले भी लिया, फिर रिजल्ट भी क्या होती है ना, अरे सच में मुझे पता नहीं इतनी इजी बात सूझी क्यों नहीं, ऐसा होता है ना, इतनी सिंपल बात उस समय मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई और सच में मेरे से कैसा डिसीजन हो गया। तो उस समय ये इतनी सिंपल बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई, क्योंकि उस समय मेरा मन तो कहां था, चिंताओं में था, उस समय मेरा मन अशांत था, तकलीफ में था। तो हमारा मन वो डिसीजन कैसे ले सकता है? राजयोग के अभ्यासी, उसकी बुद्धि कैसी हो जाती है? एकदम शार्प हो जाती है। और शार्प बुद्धि डिसीजन कैसा लेगी, क्योंकि मेरा मन हमेशा परमात्मा से कनेक्टेड है। जैसे जो स्पेस में जाते हैं ना, भले वो स्पेस में है लेकिन उनका कंट्रोल नीचे रहता है, सब कुछ उन्हें पता रहता है, वो गाइड करते रहते हैं, वो कनेक्टेड है। तो काम करते करते भी अगर मेरा मन परमात्मा से कनेक्ट होगा तो वहां से भी इंडिकेशन आएगी कि नहीं आएगी, गाइडलाइन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आज हम सब अपने फोन में यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? गूगल मैप। कहीं पर जाना होता है तो गूगल मैप, तो वो रास्ता हमें, लेकिन उसके लिए ऑनलाइन रहना, नेट चालू रखना पड़ेगा कि बंद रखना है? ऑनलाइन होंगे तो वो इंडिकेशन लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट वो बताते रहेंगे, सीधा जाओ, ये करो वो करो। फिर बीच में कुछ एरिया ऐसा आता है जहां पर नेटवर्क वीक हो जाता है, बंद हो जाए, तो वो इंडिकेशन मिलना, फिर उसी जगह से हम कहां जाए पता नहीं चलता। लेकिन अगर मेरा नेटवर्क ठीक है, अगर हम कहीं रॉन्ग वे पर भी चले गए हैं, तुरंत हमें गूगल मैप इंडिकेशन देगा कि आप कहीं गलत जा रहे हो, राइट जाना है, ऐसे जाना है। तो गाड़ी भी चला रहे हैं लेकिन ऑनलाइन भी है, गूगल हमें इंडिकेशन गाइड भी कर रहा है। तो उसी तरह हमें परमात्मा से कनेक्ट रहना है कि सब कुछ करते हुए मेरा मन जब परमात्मा से कनेक्टेड है तो हर चीज में वो हमें गाइड करेंगे, इंडिकेशन देंगे। कहीं कुछ रॉन्ग हो रहा है तो वो भी बताएंगे, इंडिकेशन देंगे। लेकिन शर्त क्या है कि मेरा नेटवर्क ठीक होना चाहिए, तब वहां से हम सारी अचीवमेंट कर सकते हैं, तब हमारी परख शक्ति बहुत शार्प हो जाएगी। आज हम कोई भी चीज को इजीली देख क्यों नहीं पाते हैं, क्योंकि समाने की शक्ति नहीं थी, मन में बहुत सारा कचरा भरा था। तो जब कचरा भरा है तो हमारा मन कोई भी चीज को अच्छे से परख कैसे सकता है? जब परख शक्ति वीक है तो जजमेंट पावर भी कैसी होगी? तो जब हमने कचरा लेना ही बंद कर दिया तो मेरी बुद्धि कैसी हो गई? फ्रेश, नीट एंड क्लीन है। और अब मेरी बुद्धि, कई बार कहते ना, पता नहीं मेरी तो बुद्धि नहीं चलती है, क्योंकि क्या भरा है उसके अंदर? हाँ, तो जब मैंने कचरा लेना बंद कर दिया, बाहर फेंकना शुरू कर दिया, डिलीट करना शुरू कर दिया, मेरी बुद्धि नीट एंड क्लीन होने लगी, तो परख शक्ति, और परख शक्ति बहुत शार्प हो गई तो फिर डिसीजन पावर वो भी, उसका लेवल भी बढ़ने लगेगा। आज कई बार हम 10-12 लोगों से पूछते हैं क्या करें क्या करें, और इतने सारे लोगों से पूछने पर भी कंफ्यूज्ड है कि पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा। इतने लोगों से पूछने पर भी आज हम स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा माइंड कुछ और कह रहा है। तो राजयोग से ये शक्ति आने लगेगी। फिर दूसरी शक्ति है सामना करने की शक्ति, है ना, पावर टू फेस। परिवार में रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, और हम सब कौन से युग में रहते हैं? कौन से युग में रहते हैं? कलयुग में रहते हैं। और कलयुग में रहते हैं जहां बहुत सारी परिस्थितियों का, चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है। कई बार जब वो नहीं कर पाते हैं फिर व्यक्ति क्या सोचता है? इससे तो अच्छा आज हम देखते हैं सुसाइडल केस समाज में बहुत बढ़ रहे हैं। किसी एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कहा मायके अभी नहीं जाना है, तो वो वाइफ ने तुरंत सुसाइड कर लिया। एक बच्चे को कहा कल एग्जाम है, टीवी नहीं देखना है, बंद करो, और बच्चे ने तुरंत पंखे पे फांसी खा ली। तो ये सारे सुसाइडल केस जो हम समाज में देख रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उसका कारण क्या है? सिचुएशन का सामना करने की उनके पास पावर नहीं है, आत्मा बहुत लो हो चुकी है। क्योंकि पावर हाउस से हम सबका कनेक्शन कट गया है, और कैसे लोगों से जुड़ गया है, हैं? हाँ, है ना, लोगों से जो खुद पावरलेस है। तो आज हम सबका कनेक्शन पावर हाउस से कट हो जाने के कारण हमारी आत्मा पावरलेस हो चुकी है, और जब ऐसी ऐसी सिचुएशन आती है तब हम उसका सामना नहीं कर पाते हैं, और तुरंत क्या सोचते हैं? इसे तो अच्छा ये छोड़ दे, पढ़ाई छोड़ दो क्योंकि मैं नहीं कर पाऊंगा, खेल छोड़ दो मैं नहीं कर पाऊंगा, अपनी हार का भी सामना है ना, हार का भी सामना नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम मेडिटेशन के अभ्यासी बनेंगे, एक पॉजिटिव थिंकिंग के अभ्यासी बनेंगे, तो क्या सिखाएगा हमें मेडिटेशन? कोई बात नहीं, हार मेरी किस वजह से हुई है चेक, किस कारण से हार हुई है चेक करें, और दूसरी बार चेंज करेंगे तो अच्छे रैंक आ सकते हैं मेरे। लेकिन हम क्या करते हैं, पहली बार में ही सामना नहीं कर पाते हैं हार का, और पहली बार में ही हम वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं कि इससे अच्छा तो छोड़ो, हम जो थे वही ठीक है, ये सब करने की हमारे अंदर पावर नहीं है, हम नहीं कर सकते, अपने आप को लो लेवल पर ले आते हैं। लेकिन हमें अपने आप को एकदम अपर लेवल पर ले जाना है, जो सूरज भाई जी ने भी कहा था कि हम किसके बच्चे हैं, है ना, किसके बच्चे हैं। सिर्फ ये सेंटेंस याद आते ही आपके अंदर से सब भाग जाएगा डर। कई बार हम एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़े व्यक्ति ने गाड़ी, कोई बहुत बड़े व्यक्ति का बेटा गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चलाते एक्सीडेंट हो गया बाय चांस, और जिसका एक्सीडेंट हुआ वो डेथ भी हो गई उसकी, फिर भी वो एकदम निश्चिंत है, फिर भी उसे कोई तरह का भय नहीं है उस व्यक्ति को जिसकी कार से एक्सीडेंट हुआ है। क्यों? क्यों? क्योंकि उसे तुरंत कौन याद आता है, मेरा पिता कौन है, वो तो बहुत बड़ा है कि ऐसे कुछ भी कर देंगे। एक तो गलती की, एक्सीडेंट किया, मर गया, तो भी वो फियरलेस है क्योंकि उसे याद आता है मेरा पिता कौन है। तो हमें भी कोई भी सिचुएशन में किसको याद करना है, मेरा पिता कौन है वो तो याद करो। और मेरा पिता, आप अपने बच्चों के साथ कहीं बाजार जाते हैं तो आप अकेले ही जाते हो या आप अपने साथ कुछ पर्स लेके जाते हो, एटीएम कार्ड्स कुछ लेके जाते हो? क्यों? क्योंकि कुछ भी बच्चा मांगेगा तो करें देंगे कैसे? तो उस बच्चे को क्या याद रहता है कि मेरे पेरेंट ही मेरे साथ नहीं है लेकिन उनके एटीएम सारे कार्ड्स भी, तो परमात्मा ही मेरे साथ नहीं है, परमात्मा उनकी सारी शक्तियों से मेरे साथ है, परमात्मा की सारी शक्तियां भी मेरे साथ है। तो सामना करने की शक्ति, कोई भी सिचुएशन को फेस करने की पावर याद आ जाएगी। यही याद करना है कि मेरा पिता कौन है, मैं किसका बच्चा हूं, और पावर हाउस का बच्चा कोई एक सिचुएशन में आने से वीक कैसे हो सकता है? तो सामना करने की शक्ति आने लगेगी। फिर दूसरी शक्ति है सहयोग की शक्ति, पावर ऑफ कॉपरेशन। हर चीज में सहयोग चाहिए, बिना सहयोग के कुछ भी नहीं होता। ये हमारी पांच उंगलियां है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई पतली है, कोई मोटी है, पांचों ही उंगलियां हमारी सेम नहीं है। कोई एक कहे बाकी चार की जरूरत नहीं, मैं अकेला ही लड्डू बना लूंगा, हाँ बाकी चार की मुझे ये बड़ी उंगली कहे, मैं तो सबसे बड़ी हूं, मुझे ये छोटी की तो जरूरत ही नहीं है, ये मोटे की तो जरूरत ही नहीं है, मैं अकेली इतनी बड़ी हूं जो मैं ये लड्डू बना सकती हूं। तो ये उंगली सबसे मोटी है, लंबी है, लेकिन क्या ये अकेली लड्डू बना सकती है? क्या चाहिए? सहयोग। तो जब कोई भी काम, चाहे हम फैमिली में रहते हैं, चाहे हम प्लेयर्स हैं या ऑफिस में रहते हैं, चाहे कोई किस लेवल पे रहता है, लेकिन कोई भी कार्य करने के लिए सबका क्या चाहिए हमें? सहयोग। मिलजुल कर रहना है, मिलजुल कर सबके साथ रहकर हमें सब कुछ करना है। सबसे अलग होकर हम कुछ भी, क्योंकि एनर्जी डिवाइड हो जाती है। परिवार में भी कोई फंक्शन होता है, सब इकट्ठे होते हैं तो एनर्जी बहुत सारी बढ़ जाती है, और अकेले अकेले सब कुछ करने से एनर्जी डिवाइड हो जाती है। और जब एनर्जी एक ही सिंगल एनर्जी पर अभी मुझे काम करना है तो कैसे कर पाएंगे? ये पांच उंगलियां मिलेगी तो एनर्जी बढ़ जाएगी और फिर कोई काम करने में हम सक्षम हो जाएंगे। इसलिए परिवार में रहकर, कहीं पर भी रहकर हम ये न सोचे मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं कर सकता हूं। जब जरूरत होगी तो आपको बताएंगे। नहीं, सबके सहयोग से हमें परिवार में भी सब कुछ करना है। एक दूसरे की टैलेंट को हमें परिवारों में भी क्या करना है, क्योंकि ये जो हमारी पांच उंगलियां हैं, हर एक उंगली की अपनी अपनी यूनिकनेस है, हर एक उंगली अपने में वैल्यूएबल है। तो परिवार का कोई भी सदस्य, ऑफिस में कोई भी सदस्य, छोटा और बड़ा, हर एक के अंदर कोई ना कोई यूनिकनेस होती है, टैलेंट है, अपनी अपनी क्षमता है। वो सारी टैलेंट्स को भी हमें अपने अपने कार्य में क्या करना है, उनका भी सहयोग लेना है, यूज करना है। भगवान भी चाहते तो गोवर्धन पर्वत अकेले उठा सकते थे ना? क्या उनके पास पावर नहीं थी? थी कि नहीं थी? भगवान अकेले गोवर्धन पर्वत उठा सकते थे ना, लेकिन फिर भी क्या कहा, मुझे सबकी उंगली का सहयोग चाहिए। तो भगवान भगवान होकर भी सबका सहयोग लेते हैं, तो हम मनुष्य मनुष्य का सहयोग कोई भी कार्य में ले सकते कि नहीं ले सकते, है ना? तो हमें सहयोग से हर कार्य करना है। फिर दूसरी शक्ति है संकीर्ण करने की, पावर टू विड्रॉ। हम सब ने सुना ही है लेसन में, अपने शिवजी के मंदिर में जाते हैं तो कछुआ कछुआ रहता है। कछुआ क्यों रहता है? हम बहुत बार मंदिर गए, पूजा करके आए और कछुए की दर्शन करके आ गए। कछुए के पास बहुत अच्छी पावर होती है अपनी कर्मेंद्रियों को अंदर ले लेने की। जहां उसे लगा कुछ है, तुरंत वो अपने आपको विड्रॉ कर लेता है। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, जहां हमें चुप रहने की आवश्यकता होती है, कोई कहता भी चुप रहो, अभी आप चुप रहो, लेकिन हम बोलते ही जाते बोल और बात को इतनी बिगाड़ देते हैं, बड़ी कर देते हैं, चुप नहीं रह पाते, शांत नहीं रह पाते, फिर कहते अरे ये नहीं करना था, ये हो गया। तो हम अपनी कर्मेंद्रियों को पावर से, जैसे कहा ना कि कंट्रोल नहीं करना है, उसको डाइवर्ट करना है, सुधारना है। तो हमें अपनी कर्मेंद्रियों का क्या बनना है? हम अपने अपने घर में तो राजा बन जाते हैं, अपने अपने ऑफिस में राजा बन जाते हैं कि सब मेरे अनुसार करे, लेकिन हमें अभी किसका राजा बनना है? स्व का। दूसरों पर राज्य करना तो बहुत इजी है, ये करो ये नहीं करो, इधर बैठो वहां नहीं बैठो। दूसरों पर राज्य करना बहुत इजी है। राजयोग हमें क्या सिखाता है? स्व पर राज्य करना। और स्व पर राज्य करने वाला ही असली राजा होता है। तो हम सब कौन है अपने आप के? हम सब कौन है? कौन कौन राजा है? बाकी आधे राजा है ऐसा? जिन्होंने आधा हाथ किया मतलब वो आधे है, आधे नहीं है ऐसा, है ना? देखो भाई जी दो हाथ उठा रहे हैं, मतलब वो डबल राजा है। तो हमें अपने आप के राजा बनना है। रोज सुबह उठकर अपने आप को याद दिलाए कि मैं कौन हूं। ये शरीर रूप आत्मा तो हूं, लेकिन मैं आत्मा राजा हूं। मैं आत्मा इस शरीर का मालिक हूं। ये शरीर एक फैक्ट्री है और ये सारी जो कर्मेंद्रिया है वो कौन है? हैं एम्प्लॉयज, क्योंकि फैक्ट्री में काम करने के लिए एम्प्लॉयज तो चाहिए। तो एम्प्लॉयज कैसे होने चाहिए? आप अपने एम्प्लॉयज कैसे रखेंगे? जो आपकी बात मानने वाले हो, जो आपको रिगार्ड देने वाले हो, जो रिस्पेक्ट देने वाले हो। तो ये जो मेरे एम्प्लॉयज है, हाथ है, नाक है, कान है, ये मेरी मानते हैं? ये मेरी मानते हैं? कई बार मानते, कई बार नहीं भी मानते। तो जब हम स्व के राजा बनेंगे, क्योंकि कहा ये नहीं देखना है, आंखें वही देख रही है, डॉक्टर ने कहा ये नहीं खाना है, जीभ वही मांग रही है, ये नहीं करना है, नहीं सुनना है, कान वही जा रहे हैं, मतलब हम अंग्रेजों से तो आजाद हो गए, लेकिन अपनी कर्मेंद्रियों के हम अभी भी गुलाम हैं। इसका कारण पता है क्या है? मान लीजिए आप एक कंपनी के बॉस हो, आप कुछ बीमार हो गए थोड़े से और कुछ दिनों के लिए आप ऑफिस नहीं जाने वाले हैं। सबको पता चल गया फैक्ट्री में, साहब एक हफ्ते की छुट्टी पे है, नहीं आने वाले हैं। अभी कंपनी में काम कैसा चलेगा? कंपनी में काम कैसा चलेगा? आएंगे नहीं आएंगे, करेंगे नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से एक घंटे के लंच में डेढ़ घंटा भी कर देंगे, सब कुछ हो सकता है। मतलब पूरा जो शेड्यूल है लोगों का, काम करने का तरीका जो है कंपनी में, वो कैसा हो जाएगा? थोड़ा चेंज हो जाएगा। एक हफ्ते पूरे हुए, सबको पता चल गया कल बॉस, कल साहेब वापिस ड्यूटी पे आने वाले हैं। कल वापिस कल से कैसा हो जाएगा, है ना? अपने आप सब वापिस, अरे बॉस आएंगे, 8 बजे पहुंचना है, अरे चलो चलो लंच का टाइम हो गया, पूरा वापिस अपने प्लांट में जाना है। कौन सी एक उन लोगों को रिमाइंडर हुआ? कल से बॉस ठीक हो गए हैं, आ रहे हैं, ज्वाइनिंग कर रहे हैं। तो ये जो हमारे एम्प्लॉयज है, हमारी कर्मेंद्रिया है, वो आज हमारा क्यों नहीं मान रही है? आत्मा अपनी शक्तियों को भूल चुकी थी, कमजोर हो, क्या समझने लगे थे हम? मैं ये नहीं कर सकता, मैं बीमार हूं, मेरे से। आत्मा अपनी शक्तियों को भूल चुकी थी, उसकी वजह से ये एम्प्लॉयज अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे थे। मेडिटेशन से, परमात्मा से कनेक्ट होकर पावर लेके क्या बन गए अभी हम? क्या बन गए? पावरफुल बन गए। अभी एम्प्लॉयज बस सिर्फ मालिक को ठीक होना है। जैसे ही मालिक ठीक हो गया, अपनी ऑफिस में आ गए, ये अपने आप ठीक हो जाएंगे। हमें कोई भी कर्मेंद्रियों के ऊपर दबाव नहीं डालना है। सिर्फ मालिक ठीक होके अपनी ऑफिस में आ जाए, सारे एम्प्लॉयज एकदम साइलेंटली काम करने, अपने आप किसी को बोलना भी नहीं पड़ेगा, वो फाइल लाओ, ये फाइल लाओ। जैसे ही बॉस ऑफिस में आए, फाइल लेके आना अपने आप शुरू हो जाएगा। प्यून अपने आप पानी लेके आ जाएगा, चाय लेके आ जाएगा, सब अपने आप ठीक हो जाएगा, किसी को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं पड़ेगी, ये ठीक होने से खाली। और ये ठीक होने का तरीका जो बार बार रिपीट करेंगे, कनेक्शन, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ना, मतलब आत्मा ठीक हो जाएगी। तो हमारी कर्मेंद्रियों को कहां हमें बाहर निकालना है, कहां हमें अंदर लेना है, कर्मेंद्रियों से क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है, वो पावर भी अपने पास आती जाएगी। फिर है शक्ति, समेटने की शक्ति, पावर टू पैकअप। है पावर इतनी पैकअप करने की? हम तो इतना विस्तार करके बैठे हैं, अपनी बुद्धि को इतना स्प्रेड करके बैठे हैं। तो पावर टू पैकअप मतलब जो हमने सुना कि कहीं बाहर जाना होता है तो उसकी तैयारी हम कितने दिनों से पहले से करते हैं, और अगर ट्रेन का टाइम है और उसके पहले थोड़ी पहले शुरू करेंगे तो ट्रेन छूट जाएगी। वो ट्रेन एक बार निकल गई तो दूसरी भी मिल सकती है, लेकिन समय की ट्रेन एक बार निकल गई, क्योंकि कहते हैं समय एक ऐसी गाड़ी है जिसकी न तो ब्रेक है, जिसकी न तो रिवर्स गियर है, वो किसी के लिए रुकेगी भी नहीं और किसी के लिए पीछे आएगी भी नहीं, रिवर्स गियर नहीं है उसके पास। तो समय से पहले हमें भी क्या करना है, अपने आप को पावरफुल बना लेना है, अपने संस्कारों को, अपने कर्मों को हम इतना अच्छा श्रेष्ठ बना के इतना सारा अपना स्टॉक जमा कर ले। इसी को कहते हैं अष्ट शक्तियां। तो राजयोग से क्या होगा, हमें यही सारी अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होगी। तो आप सबकी अभी क्या होगी, एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी, होगी कि नहीं होगी? कौन कौन अपनी न्यू जर्नी करने को तैयार है और कैसे करनी है, पहले जैसे करते थे वैसे या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए? हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आपको देखकर लोगों को लगे कि अरे इनका काम करने का तरीका चेंज कैसे हो गया है ना, कुछ फील करे, हमारे अंदर से वो फीलिंग आनी चाहिए। और ये जो सुना है सिर्फ सुनने से नहीं होगा, कोई भी चीज को हमें रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। जैसे प्लेयर्स को भी रोज क्या चाहिए, कोच चाहिए, बिना कोच के बिना प्रैक्टिस के। हाँ, तो हम आप सब जहां जाएंगे वहां, आप सब वैसे यहाँ पर आए हो तो कोई ना कोई सेंटर से कनेक्टेड होके ही आए होंगे, तो आप जो सेंटर से कनेक्शन रखते हो तो वहां पर जरूर जाइए। सिर्फ ज्यादा समय नहीं दे सकते तो 10 मिनट के लिए भी सेंटर पर जरूर जाए। लोग मंदिर में पता है क्यों जाते हैं, दर्शन करने, लेकिन हमें सेंटर पर क्यों जाना है पता है, दर्शन देने, क्योंकि वहां हमारा पिता भी हमारा रोज। हाँ, तो मंदिर में भक्त बनकर दर्शन करने जाते थे, लेकिन यहाँ पर बच्चे बनकर अपने पिता को दर्शन, तो रोज दर्शन 5 मिनट भी एटलीस्ट बाबा को दर्शन दे आए हैं। कई लोग सेंटर पे आते ना तो चलो बाबा के दर्शन करके आते, हमने कहा बाबा दर्शन करने नहीं बैठा है, दर्शन लेने बैठा है। तो क्योंकि आप भी अपने बच्चे के टाइम 5 बज गए अभी तक, अभी स्कूल से वो आएगा आएगा आएगा, आप भी टाइम होते ही अपने बच्चे का इंतजार करते हैं कि अभी आएगा, तो बाबा भी अपने हर बच्चे का रोज इंतजार करते हैं कि मेरा बच्चा भी आएगा। तो क्या करना है, दर्शन करने जाना है या देने जाना है, सोचिए। भगवान हमारे दर्शन करने के लिए बैठा है कि कब मेरा बच्चा आए। और आप अपने बच्चा आता है तो तैयारी कुछ करके रखते हो कि नहीं रखते हो, नाश्ते की, उसे जो पसंद है वो खाने पीने की तैयारी भी करके रखते हैं। तो जैसे ही हम भी परमात्मा को मिलते हैं ना, तो वो भी बहुत सारी पावर हमें दे देते हैं कि मेरा बच्चा पूरे दिन का थका हाराया है, या जब हम जा रहे हैं सुबह सुबह सेंटर पर और अपने जॉब में अपने अपने घरों में, तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? पावर चाहिए। तो वो पावर लेके फिर हम अपने अपने फील्ड में, देखो यहां पर सुबह यहां पर भी क्लास होता है और फिर लोग क्या करते हैं, बैठे रहते हैं, बस सुना और वापस अपने अपने डिपार्टमेंट्स में, कोई भोजन में चला गया, कोई सब्जी में चला गया, कोई बस में चला गया, सब अपने अपने जो जो सबको ड्यूटीज दी है वो वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए चले जाते, कोई स्टेज पे आ जाते हैं, हर कोई। तो काम सब होता है लेकिन बिना अपने आप को चार्ज करे हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए अपने लिए हमें समय निकालना है और करना है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो आप सबको अपनी न्यू लाइफ के लिए हैप्पी जर्नी, और समझो ये आज हमारा एक नया जन्म हो रहा है। रोज आंख खुलते ही याद दिलाए आज मेरा हैप्पी बर्थडे, आज मेरा बर्थडे है और उसी दिन की हमें खुशी में रहना है। तो चलिए अभी हम सब 2 मिनट परमात्मा को याद कर लेते हैं। फील करें कि जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाया है कि एक योगी बैठा है और उसके ऊपर बहुत सारी पावर्स आ रही है, तो आप सब भी फील करें कि मेरे ऊपर वो सारी पावर्स परमात्मा की मेरे अंदर आ रही है और मैं भी एक पावरफुल सोल बन रहा हूँ। महसूस करें कि स्व की कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाला मैं राजा हूं। ये कर्मेंद्रिया मेरी कर्मचारी है, मुझे आत्मा के अंदर ये सारी इनर पावर भरी हुई है, क्योंकि मैं ऑलमाइटी बाप का बच्चा हूं। आज तक मुझे मैं कौन हूं, मेरा पिता कौन है, यही पता नहीं था, इसलिए खुद को लो मानते थे, हार जाते थे। अभी मेरे अंदर वो सारी शक्तियां समाई हुई है और वो सारी शक्तियों को मुझे अपने कर्म क्षेत्र पर यूज करनी है। फील करें मेरे सिर के ऊपर परमात्मा पावर हाउस है, और उनकी सारी शक्तियां मेरे अंदर समा रही है। मेरे अंदर टॉलरेंस पावर भी आ रही है, सिचुएशन को फेस करने की पावर भी आ रही है। फील करें एक शक्तियों के फाउंटेन के नीचे हम बैठे हैं, मेरा मन तो शक्तिशाली हो ही रहा है, साथ साथ मैं फिजिकली भी बहुत फिट हो रहा हूं, मेरा ब्रेन, मेरा हार्ट, लंग्स, पेनक्रियास, किडनी, इस शरीर के जो मेन मेन ऑर्गन है वो भी पावरफुल होते जा रहे हैं। परमात्मा की सारी शक्तियां मेरे मन को और तन को दोनों को स्वस्थ कर रही है। आज से मुझे यही शक्तियों को याद रखना है कि मैं एक पावरफुल बीइंग हूं। और इसी शक्तियों के साथ मुझे अपने अपने कर्म क्षेत्र पर जाना है। ओम शांति।